SBS हिंदी।
दोस्तों, SBS हिंदी पर आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला प्रतिभा से जो अपने छोटे छोटे कामों से समाज में बड़ा बदलाव लाने की ख्वाहिश रखती हैं और उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं, को मिलवाती हूँ अर्पणा जी से। अर्पणा जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं का।
अर्पणा जी, कहा जाता है कि छोटी छोटी चींटी भी जब कुछ काम करने का करती है लेकिन उससे रिजल्ट्स बड़े आते हैं। आप भी ऐसे ही काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हैं, एक पूरी जनरेशन को एम्पावर करने का काम करती है, तो आपके कार्यों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
साहस एक गैर सरकारी संस्था है। हम लोग फॉर्मली 2013 से काम कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी हम काम कर रहे थे लेकिन एक आधिकारिक तौर पर, एक संगठन के तौर पर अगस्त 2013 से हमने काम करना शुरू करा। हम बेसिकली हम काम करते हैं समाज के सुधार के लिए जो वंचित है सुविधाओं से, पैसे की कमी से कहेंगे, और जहां तक नहीं पहुंचा है समाज के साथ ही तौर पर हम काम करते हैं। और इसमें भी खास तौर पर हमारा ध्यान रहता है बच्चों और महिलाओं को लेकर। बच्चे इसलिए है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ काम करना। अगर हम आज बच्चे बहुत मासूम होते हैं और वो सीख रहे होते हैं चीजों को, और वो उन सब सब कई तरह की बुराई और कई तरह की जो बाद में जाके चीजें आती है उनके साथ छुट्टी होते हैं, अगर बचपन में ही उनको एक सही दिशा मिल जाए तो वो एक बेहतर समाज, बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी जरूरत है, जैसे आप समझती हैं भारत में, दुनिया भर में कितनी सारी दिक्कतें हैं महिलाओं के साथ, कितनी सारी चीजों से गुजरती हैं, तो ये फिलहाल इन दो काम कर रहे हैं।
तो अर्पणा जी, आप बताइए कि आप वंचित बच्चों को जब शिक्षा प्रदान करती हैं तो ये कार्य शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करा कि रेलवे स्टेशन में मैंने सुना था कि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती है बच्चों के साथ। शिक्षा ही करेंगे, शिक्षा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हमको एक ऐसी चीज से निकलना है जो जहाँ पे कुछ खराब हो रहा है उसे निकलने के लिए समाधान कुछ और हमको मिल नहीं रहा था, तो हम एक शिक्षा की ओर गए। तो शुरुआत में हमारे पास ऐसा हुआ कि बच्चे ज्यादा मतलब बात नहीं कर रहे थे, भाग जाते, फिर धीरे धीरे करके वो जब खुले, जब रोज हम उनके पास जा रहे थे तो खुले, तो फिर वो अपने घर ले गए। तो मुझे पहली बार पता चला कि एक दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पे, गाजियाबाद में बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, एक गाँव है वो, और वो पूरा ऐसे है कि वहाँ पे बहुत सारी बस्ती है सिर्फ कूड़ा बीनने वालों की। तो वहाँ से रहते कैसे लोग, मतलब कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं वहाँ पे रहते हैं, मतलब वहाँ पे एक तो खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सारी चीजें अभी भी दिखती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है ना कि अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो कूड़े को लेकर ही काम करते हैं। तो पहले अब बच्चे तो हमको पहचान चुके थे लेकिन उनके घर वाले तो भी उनको नहीं पहचाने थे ना, तो अब उनको भी विश्वास दिलाना जरूरी था। तो फिर उसकी हमने क्या करा कि 3-4 महीने लगातार हम बस्ती में ही पढ़ाते थे, वही झोपड़ी में उन्हीं की किसी की झोपड़ी में, फिर जो है हम बैठ जाते शाम को ऑफिस के पहले ये बाद में जो है, तो वहाँ पे हम बच्चों से थोड़ा बहुत काम करते, खेलते, पढ़ते, ड्राइंग करते, एक्टिविटीज करते, इस तरह की चीजों की। जब उनको ट्रस्ट हुआ हमारे ऊपर कि हाँ ठीक है, जब उनको लगा कि खतरा नहीं है तो वो थोड़ा ज्यादा विश्वास करने के लिए। तो फिर हमने एक पास के भी स्कूल में, जहाँ पे मॉर्निंग स्कूल चलता था, इवनिंग के लिए हमने कमरा ले लिया, कि हमने स्कूल से बात कर ली कि इवनिंग क्लास पे हमको किराए पे कमरा दे दो तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे।
आपके जो ये प्रयास हैं, क्या कोई सरकार की तरफ से आपको कभी भी मदद मिली?
एक बार मैंने क्या किया, तभी अखिलेश यादव की सरकार थी तो सीएम अखिलेश को मैंने ट्वीट भी किया, जो उस समय के सीएम थे, तो उन्होंने तत्काल रिस्पॉन्स भी किया और 24 घंटे के अंदर पूरी गाजियाबाद की BSA और शिक्षा अधिकारी सब पहुंच गए और आदेश हुआ कि इनका बच्चों का सबका एडमिशन करवाया गया। तो वो चीज काफी उत्साहित है, तो इस चीज के लिए कि जो हो गया और बच्चों का दाखिला हो गया, सरकार ने तुरंत एक्ट किया जो नॉर्मली चीजें होती नहीं थी। लेकिन उसका भी मैं आपको बताऊँ क्या हुआ कि सरकारी अधिकारी जो थे सब आदेश देखे तो चले गए, लेकिन जो लोकल प्रिंसिपल था तो उसको ये बात, उनको जो ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। कुछ दिन बाद अब मैं दूर रह रही थी बस्ती के दूर, तो ये स्कूल पास में था और ये तब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पेरेंट्स की और एक तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे। हुआ ये कि बच्चे गए, एक हफ्ते बाद स्कूल गए, तो उनको वहां से भगा दिया गया, फिर से भगा दिया गया ये कहकर कि जाओ तुम अपनी मैडम को लेके आओ जो बड़ा बात कर रही थी ये वो, तो कहाँ के तुम अंगे थे वगैरह, तुम्हारा नाम कर दिया। सर की बातें हुई तो मैं तो शॉक में गई ना, ये कैसे एकदम से चीज होगी। तो मैंने प्रिंसिपल से बात करी कि ये क्या है, तो वो भी अपनी तरह की बातें करने लगा। फिर हम ये जो एक चीज हुई थी जो बहुत साल के साथ स्टार्ट हुई थी, एक तरह से नाकाम होती हमको दिखे ना, तो अब हमारे सामने फिर विकल्प एक ही था कि हम तो बच्चों को पढ़ना तो था ही, तो हमने फिर जब हम कुछ घंटे क्लास ले थे हमने इसको फुल टाइम कर दिया। तो अब हमारा स्कूल 8 से 2 बजे हमारा स्कूल चलता है, हमारे पास 4 से 5 बच्चे हैं हमारे अभी। फिर हमने साहस लर्निंग सेंटर की शुरुआत की।
तो क्या आपके लर्निंग सेंटर में जो पारंपरिक रूप से शिक्षा दी जाती है उसी को फॉलो किया जाता है या फिर वैकल्पिक शिक्षा पद्धति जो है उसको अपनाया गया है?
अब हमारे पास जो बच्चे हैं तो उनकी सिर्फ हम ये सोचें कि सिर्फ अक्षर ज्ञान से हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया तो नहीं, वो सब चीजें नहीं होती है। वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या करना है, बच्चों की खुद की आजादी, उनकी खुद की इंडिपेंडेंस क्या कहती है, मतलब क्या किस तरह से वो चीजें करना चाहते हैं, उनकी राय क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट दिखती है। अभी जैसे हमारे स्कूल में कोई भी फैसले होते हैं तो उसमें टीचर्स के साथ साथ बच्चों का शामिल होना भी जरूरी है, क्योंकि ये उनको इस तरह से है कि यार तुम्हारा है ये स्कूल तो तुम ये फैसले ले सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और बच्चों को नहीं पसंद है, अगर हमको भी कोई चीज पसंद नहीं है तो हम सब कैसे देख सकते, और बच्चे को भी चीज नहीं पसंद है तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि वो सही है तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे इसको बेहतर करा जा सकता है, तो अगर समझा के अगर चीजें राजी हो सकती हैं तो हम सुलझ जाते हैं। हम जो है वैकल्पिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं कि हम क ख ग या ABCD से स्टार्ट नहीं करते, हम उनको पहले चीजों से जानकारी दिलाते हैं कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ऐसे बोल रहे हैं, इसको ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके बाद हम लिखने पे जाते हैं। ये हमारा पैटर्न है जो स्टडी का, और साथ में कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से और गीतों के माध्यम से भी। हम हमारे यहाँ की एक जैसे मॉर्निंग असेंबली का एक पैटर्न होता था कि सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो उसमें अब हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के बच्चे वो गीत गाते हैं जिसमें उनके लोकल भाषा के गीत भी शामिल है, जिसमें कई तरह के लोकगीत हो या इस तरह के जेन्युइन गीत जो हमको लगे कि ये इनसे बात हो सकती है, मतलब गीत हम गा रहे हैं तो उनसे चर्चा भी करते हैं इसका मतलब क्या है।
अरे वाह, बहुत ही अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं कि आपके ये सारे प्रयत्न हैं वो इसी तरह से चलते रहें, उससे समाज में सही में कुछ बदलाव लाया जा सके। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।